بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت ایوم انواع سے کریں گے۔ آج آپ قرآن مجید کے سورہ اسراء کی 13، 14، 15، 16 آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری رفیع۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر منوش کا کرم پتر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور پرلے کے دن اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی بھانتی پرستت کریں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ जो कोई मार्गदर्शन प्राप्त करता है वो अपने लाभ के लिए करता है, और जो पथ भ्रष्ट हो जाता है वो भी अपना ही नुकसान करता है, और कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। और हम लोगों को उस समय तक दंड नहीं देते जब तक उनके बीच कोई रसूल न भेज दें, और जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा कर लेते हैं तो वहाँ के सुख भोगी लोगों को आदेश देते हैं, जब वे उसकी अवज्ञा करते हैं तो हमारी बात सिद्ध हो जाती है, फिर हम उसे बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज गुरुवार है, रमज़ान की 26, उर्दी बहिश्त की 8 और अप्रैल की 28 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको रमज़ान के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे, और श्रोताओ सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज की बात। तो यह इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब फोर्स ने कहा है कि अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन के नेता ने कहा है कि कुद्स पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले इसराइल के खिलाफ शहादत प्रेमी हमले तेज होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तो असम में जहां पहले गोलियां चलती थीं, अब तालियों की आवाजें गूंज रही हैं। रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप की ओर से कड़ी चेतावनी दी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब फोर्स ने कहा है कि अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इसराइल का खात्मा करीब है। IRGC ने विश्व कुद्स दिवस के अवसर पर अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीनियों का इंतफाजा जन आंदोलन ज़ायोनी शासन के केंद्र की सुरक्षा दीवारों को भेद कर अंदर पहुंच चुका है, और ये ज़ायोनियों की जिंदगी के केंद्र में बहुत बड़े धमाके का इशारा है। बयान में कहा गया है कि ईरान की इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संस्थापक इमाम खुमैनी ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर पवित्र महीने रमजान के आखिरी जुमे को विश्व कुद्स दिवस करार दिया। ये फिलिस्तीनियों के हक में सारी दुनिया की आवाज उठाने का मौका है। बयान में कहा गया है कि विश्व कुद्स दिवस के ऐलान को 43 साल बीत चुके हैं। इस मुद्दत में हालात उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि तेल अबीब की सांसें रुकने लगी हैं और कुद्स पर कब्जा करने वाले अपने अंत के करीब पहुंच गए हैं। विश्व कुद्स दिवस पर ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामेनेई भाषण देंगे। पवित्र महीने रमजान के आखिरी जुमे को मनाए जाने वाले विश्व कुद्स दिवस पर सुप्रीम लीडर का भाषण टीवी चैनलों से लाइव प्रसारित किया जाएगा। यह भाषण 29 अप्रैल को तेहरान के समय के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी संगठन के नेता मोहम्मद शलाह ने कहा है कि कुद्स पर गैर कानूनी कब्जा करने वाले इसराइल के खिलाफ शहादत प्रेमी हमले तेज होंगे।
محمد صلاح نے تسنیم نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ دنوں جو شہادت پریمی حملے ہوئے ان کی وجہ فلسطینی عوام کے خلاف زائونی شاسن کے جگن اپرادھ تھے۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک مسجد الاقصا میں بار بار فلسطینیوں پر حملے کیے، انہیں قتل کیا اور ان کی زمینوں کو ہڑپا ہے۔ محمد صلاح نے کہا کہ کچھ عرب سرکاریں اسرائیل کے ساتھ جا کھڑی ہوئی ہیں، اسے دیکھ کر فلسطینیوں کا یہ سنکلپ اور بھی مضبوط ہوا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد تیز کرنا ہے، تاکہ اسرائیل سے رشتے قائم کرنے والی عرب سرکاروں کو بھی یہ سندیش دے دیا جائے کہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ غداری کی ہے۔ جہاد اسلامی کے نیتا صلاح نے کہا کہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ فلسطینی کبھی بھی ہار نہیں مانیں گے اور اپنے ادھیکار کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے اسم راجیہ کے دورے پر اپنے بھاشن میں کہا کہ پہلے جہاں گولیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، آج وہاں تالیاں گونج رہی ہیں۔ دیفو پہنچے بھارتی پردھان منتری نے شانتی، ایکتا اور وکاس ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار جہاں بھی ہو، وہاں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کی بھاونا سے کام کرتی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ اسم کی استھائی شانتی اور تیز وکاس کے لیے جو سمجھوتا ہوا تھا، اس کو زمین پر اتارنے کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2014 کے بعد سے نارتھ ایسٹ میں مشکلیں کم ہو رہی ہیں، لوگوں کا وکاس ہو رہا ہے۔ آج جب کوئی اسم کے جنجاتیہ کھیتروں میں آتا ہے، نارتھ ایسٹ کے دوسرے راجیوں میں جاتا ہے تو حالات کو بدلتا دیکھ کر اسے بھی اچھا لگتا ہے۔ تریپورہ کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ اسم کے علاوہ تریپورہ میں بھی این ایل ایف ٹی نے شانتی کے پتھ پر قدم بڑھائے۔ نریندر مودی نے افسپا کے سندرب میں کہا کہ لمبے سمے تک آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ نارتھ ایسٹ کے انیک راجیوں میں رہا، لیکن بیتے 8 سالوں کے دوران استھائی شانتی اور بہتر قانون ویوستھا لاگو ہونے کے کارن ہم نے افسپا کو نارتھ ایسٹ کے کئی کھیتروں سے ہٹا دیا ہے۔ بھارت میں تلنگانہ راجیہ کے مکھیہ منتری کے چندر شیکھر راو نے گروار کو کہا کہ راجیوں سے ٹیکس گھٹانے کے لیے کہنے پر پردھان منتری مودی کو شرمانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے راجیہ میں ورش 2015 سے ایندھن ٹیکس میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی۔ پردھان منتری نریندر مودی دوارا پیٹرول ڈیزل پر ویٹ نہیں گھٹانے کو لے کر بدھوار کو راجیہ سرکاروں پر کسے گئے طنز کو لے کر وپکش شاست راجیوں کے مکھیہ منتریوں نے تیکھے شبدوں میں پلٹوار کیا ہے۔ دیش بھر میں کورونا کے حالات پر بدھوار کو مکھیہ منتریوں کے ساتھ ہوئی ایک بیٹھک میں وپکش شاست کئی راجیوں میں ایندھن کی اونچی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منتری نے اسے انیائے قرار دیا تھا اور راجیہ سرکاروں سے آگرہ کیا تھا کہ وہ عام آدمی کو لابھ دینے کے ادیش سے راشٹر ہت میں ویٹ کو گھٹائیں۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بدھوار کو پاکستان کے ودیش منتری کے روپ میں شپتھ لی۔ پاکستانی میڈیا میں یہ اٹکلیں تھیں کہ ودیش منتری کا پد سنبھالنے کے لیے بلاول کی کچھ شرطیں تھیں اور وہ کچھ مدوں پر مسلم لیگ نواز کی سہمتی چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے لندن میں پورو پردھان منتری نواز شریف سے ملاقات کی جو کامیاب رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ودیش منتری کا پد سنبھال لینے کے بعد ٹیکہ کار یہ مان رہے ہیں کہ شہباز شریف کی سرکار کو مضبوطی ملی ہے، وہیں اب یہ بحثیں چھڑ گئی ہیں کہ ودیش منتری کے روپ میں بلاول کے سامنے کیا چنوتیاں ہیں۔ حالیہ ورشوں میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے رشتوں پر برف جمی ہے، جسے ہٹانا کافی کٹھن ہوگا۔ حالانکہ نئی سرکار کے گٹھن کے بعد امریکہ سے کچھ سکاراتمک اشارے تو ملے ہیں، مگر ویوہارک روپ سے سمبندھوں کے پراروپ رجحان میں بدلاؤ لانا کافی کٹھن ہوگا۔ بلاول کے سامنے ایک اور بڑی چنوتی بھارت کو لے کر بتائی جاتی ہے۔ عمران سرکار کے دوران بھارت کے ساتھ پاکستان کے رشتوں میں تناؤ رہا، اب بلاول کے لیے یہ کڑی پریکشا ہوگی کہ اس مورچے پر وہ کس طرح آگے بڑھ پاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ودیش منتری اے کے عبد المومن نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں مدھر دوپکشیہ سمبندھ رہے ہیں اور برہسپتیوار کو ودیش منتری ایس جے شنکر کے دورے کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ سبھی بڑے دوپکشیہ مدوں پر بات ہوگی۔ مومن نے کوئی بیورا دیے بنا کہا کہ جے شنکر برہسپتیوار کو آدھے دن کی آدھیکارک یاترا پر ڈھاکہ آئیں گے۔ انہوں نے امید جتائی کہ جے شنکر ان کے دیش کے لیے کچھ اچھا سماچار لا سکتے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو چکت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دیش 7ویں بنگلہ دیش بھارت سنیکت سلاحکار آیوگ جے سی سی کی بیٹھک کی تیتھی طے ہونے کی امید کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھک نئی دلی میں ہونی ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے یوکرین میں پشمی دیشوں کے ہستکشیپ کی اور سے کڑی چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو جواب میں بجلی گرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشمی دیش روس کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ روس نے امریکہ کو بھی چیتاونی دی کہ وہ یوکرین ہتھیار سپلائی نہ کرے۔ پشچم سے آنے والے ہتھیاروں کی بڑی کھیپ سے یدھ کی جوالا بھڑک رہی ہے۔ सेंट पीटर्सबर्ग में सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिम रूस को कई हिस्सों में बांट देना चाहता है और उसने ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में ढकेल दिया है। पुतिन ने कहा कि यहां जारी घटनाओं में अगर बाहर से किसी ने कदम रखने और रूस के लिए स्ट्रेटेजिक खतरे पैदा करने की कोशिश की तो हम यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारा जवाब आसमानी बिजली के समान होगा। हमारे पास इसके सारे संसाधन मौजूद हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे ये संसाधन अगर दूसरों के पास होते तो वे इस पर इतरा रहे होते, लेकिन हम इस पर कभी नहीं इतराते, मगर जरूरत पड़ी तो इन्हें इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये बात सब जान लें। ज्ञात रहे कि 24 फरवरी से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और अब तक इस युद्ध से काफी तबाही हो चुकी है। यूक्रेन पर आक्रमण करने के चलते यूरोपीय संघ की ओर से रूस पर बहुत से प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया था कि अगर कोई रूस से गैस खरीदना चाहता है तो उसे केवल रूबल में भुगतान करना होगा। ब्लूमबर्ग के अनुसार चार यूरोपीय गैस खरीदारों ने पहले ही गैस आपूर्ति के लिए रूबल में भुगतान कर दिया है। रूसी गैस प्रोम पीजेएससी के करीबी एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। वहीं रूबल भुगतान के लिए गाजप्रोम के प्रस्तावित तंत्र को अस्वीकार करने के बाद पोलैंड और बुल्गारिया की गैस की सप्लाई काट दी गई है। कंपनी से जुड़े व्यक्ति के अनुसार यह यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम जो भी हो, यूरोप की सुरक्षा बदल गई है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉन कर्बी ने गुरुवार की सुबह कहा कि दुनिया में कोई भी इस बात को देखना पसंद नहीं करेगा कि यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन तोपखानों को यूक्रेन भेजा जाना था उनमें से आधे से अधिक को यूक्रेन भेज दिया गया है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियारों का भेजा जाना जारी रहेगा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार उन्होंने इस संभावना के जवाब में कि यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है कहा कि परमाणु हथियारों के प्रयोग की संभावना से डराना दायित्वहीन धमकी है और कोई भी नहीं चाहता कि यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाए। म्यांमार की सैनिक सरकार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को करप्शन के 11 मुकदमों में से पहले मुकदमे में दोषी ठहराने के बाद 5 साल कैद की सजा सुनाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नोबल पुरस्कार हासिल करने वाली मगर रोहिंग्या नरसंहार के मामले में बेहद विवादित स्टैंड लेने वाली आंग सान सू की पर कम से कम 18 आरोप हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 190 साल जेल की सजाएं हो सकती हैं। अदालत के जज ने मुकदमे की सुनवाई के कुछ ही क्षणों के भीतर फैसला सुना दिया और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुकदमे बंद दरवाजों के पीछे चलाए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अदालत की सारी सुनवाइयों में पेश होने वाली सू की अदालत के फैसले से नाखुश हैं और वो इसके खिलाफ अपील दायर करेंगी। ज्ञात रहे कि फरवरी 2021 में सैनिक बगावत के बाद सत्ता गंवाने से पहले लोकतंत्र की बहाली की संक्षिप्त मुद्दत में 76 वर्षीय सू की ने 5 साल तक हुकूमत की थी। सू की को बगावत के बाद गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर रखा गया है। आंग सान सू की पर इस ताजा मुकदमे में आरोप हैं कि उन्होंने यांगून शहर के पूर्व चीफ मिनिस्टर फियो मिनथिन से 11 किलो से अधिक सोना और $600,000 की नकदी की अदायगी स्वीकार की थी। बोहरी शिया समुदाय के इमाम ने मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित मस्जिद उल हुसैन का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह सीसी भी थे। बोहरा समुदाय के इमाम और मिस्री राष्ट्रपति ने मस्जिद उल हुसैन के पुनर्निर्माण के काम का जायजा लिया। मस्जिद उल हुसैन का पुनर्निर्माण बोहरा समुदाय के इमाम सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की तरफ से करवाया जा रहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। इराकी संसद सभापति की तेहरान यात्रा और अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात का जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के संसद सभापति ने अपने इराकी समकक्ष से मुलाकात में कहा कि दोनों देश व्यापक सहयोग के लिए गंभीर इरादा रखते हैं और कोई भी तत्व ईरानी और इराकी राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण और गहरे संबंधों को खराब नहीं कर सकते। इराक के संसद सभापति मोहम्मद अल हलबूसी बुधवार को एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ तेहरान पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भेंट वार्ता की। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने अपने इराकी समकक्ष से मुलाकात में बल दिया कि ईरान इराक में राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करता है और एक मजबूत इराक को क्षेत्र की शांति और स्थिरता का रक्षक समझता है। इस मुलाकात में इराक के संसद सभापति ने ईरान के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि इराक का संविधान उन लोगों और संस्थाओं की गतिविधियों की इजाजत नहीं देता जो पड़ोसियों के लिए खतरा हों। दो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के रूप में ईरान और इराक हमेशा से राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मामलों में विचार विमर्श करते रहे हैं और इसी परिधि में इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने 13 अप्रैल को तेहरान यात्रा के दौरान अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की थी। अमेरिका और इसराइल के खुले और गुप्त हस्तक्षेप गैस और बिजली निर्यात की वजह से इराक पर ईरान के ऋण, सीमावर्ती पानी का मुद्दा और पर्यावरण से जुड़े मामले जैसी समस्याओं के बावजूद ईरान और इराक के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और ये प्रगति की ओर अग्रसर भी रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बारे में अपने गंभीर इरादों को जाहिर कर दिया है। इस्लामी गणतंत्र ईरान इराक में स्थायी शांति और राजनीतिक स्थिरता को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरत समझता है और उसने इराकी जनता के इरादों और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं का भी प्रयोग किया है। ईरान अमेरिका और इसराइल की हस्तक्षेपपूर्ण कार्रवाइयों पर नजर रखते हुए इराक सहित पड़ोसी देशों में उनके पिट्ठुओं पर गंभीर नजर रखे हुए है और हर उस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देता है जो ईरान और क्षेत्र की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
इराक में कुद्स दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट मोहम्मद मेहदी की जबानी।
इराक की राजधानी बगदाद में फिलिस्तीन का राष्ट्रीय गान बजाया गया। इराकी समाज के विभिन्न वर्गों व गुटों के लोगों ने स्वयं को विश्व कुद्स की रैलियों में भाग लेने के लिए तैयार कर लिया है।
في هذا الشهر الكريم كلنا نتذكر ذكرى يوم القدس العالمي।
इस पवित्र महीने में भी हम विश्व कुद्स दिवस की याद में हैं। हम समस्त इराकियों का आह्वान करते हैं कि वे भी दूसरे राष्ट्रों व लोगों के कांधे से कांधा मिलाकर शुक्रवार को विश्व कुद्स दिवस की रैलियों में इसराइल विरोधी नारे लगाएं।
من البصرة البيضاء إسرائيل إلى الزوال القدس درب الشهداء
نجمة سوف لنحرقها حرقا فهي الشطر।
किंतु इराक में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद शिया व सुन्नी सहित दूसरे समुदाय के लोगों का मानना है कि फिलिस्तीन और कुद्स जैसे मामलों के संबंध में हमें अपने बीच मतभेदों को भुलाकर एकजुट रहना चाहिए।
وقفتكم هذه شوكة في عيون كل المتخاذلين و والمطبعين.
وشو قدس دیوس دشمنوں اسرائیل اور اس کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کرنے کی پکشدھر سرکاروں کی آنکھوں کا کانٹا ہے. یہ مسلمانوں کی ایکتا و ایک جڑتا ہے جو غیر قانونی سرکار کے انت کی بھومکا پرشست کرے گی. یہ جوان لڑکی فلسطینی ہے پرنتو اس کا جنم عراق میں ہوا ہے. زائنیوں نے اس کے ماتا پتا کو دسیوں سال پہلے بے گھر کر دیا تھا. اس وقت اس کی امید قدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا سمرتھن ہے.
للموت احنا ما ننساها طبعا.
وہ کہتی ہے جب تک زندہ ہیں تب تک فلسطین کی یاد ہمارے دلوں سے نہیں نکلے گی. زائنیوں نے ہمیں بے گھر کر دیا ہے تاکہ ہم اپنے پروجوں کا گھر دوار اور ماتر بھومی سب کچھ بھول جائیں. کنتو ہماری امید ایشور اور مسلمان راشٹروں سے ہے کہ ہم ان کے سمرتھن سے اپنی ماتر بھومی واپس جائیں گے. عراقی ورش 2003 سے پرتی ورش دیش کے وبھن پرانتوں میں وشو قدس دیوس سے سمبندھت کاریکرم کرتے اور ریلیوں میں بھاگ لیتے ہیں. اور اس ورش بھی عراقی لوگوں نے دیش کے ادھکانش پرانتوں میں وشو قدس کی ریلیوں میں بھاگ لینے کے لیے سوئم کو تیار کر لیا ہے تاکہ دوسرے راشٹروں کے لوگوں کے ساتھ نئے اتہاس کی رچنا کریں.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں آیوجت ایک دھارمک پردرشنی کا بیورہ دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی.
قدسی کلا کی نرنترتا شیرشک کے انترگت قرآن اور اسلامک دھروہر کی ایک انتراشٹریہ پردرشنی بھارت کے نگر حیدرآباد کے سالار جنگ سنگرہالے میں آیوجت ہوئی. اس دھارمک ایوم کلا پردرشنی میں قرآن کریم کے 400 نسخوں کے اتیرکت 60 قلمی نسخوں اور ایرانی اور بھارتی کلاکاروں کے 15 پرتیکرتک نسخوں کو پردرشت کیا گیا. اس پردرشنی کا ادگھاٹن تلنگانہ کے گرہ منتری محمد محمود علی اور ایران کے سانسکرتک کیندر کے ادھیکش ڈاکٹر علی ربانی نے کیا. اس پردرشنی میں بھارت کے وبھن پستکالیوں کے قرآنی نسخوں اور 12 پستکالیوں کے 60 سے ادھک قلمی نسخوں کو پردرشت کیا گیا. قرآن اور اسلامک دھروہر کے اس انتراشٹریہ پردرشنی میں علامہ قاضی نور اللہ شوشتری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 پستکوں کے پرتیکرتک نسخوں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر کے اتیرکت مائکرو نور فلم انتراشٹریہ کیندر کے بھارتی کلاکاروں دوارا تیار کیے گئے قرآنی پورا وستوؤں کے سنگرہ کا بھی ویموچن ہوا. اس پردرشنی میں نور مائکرو فلم کیندر دوارا پنرجیوت کیے گئے 15 قرآنی تفسیروں کے پراچین ایوم نرمل نسخوں کو بھی پردرشنی میں رکھا گیا تھا. تلنگانہ کے گرہ منتری محمد محمود علی نے وشو کے سب سے بڑے خطی قرآن کی مرمت کی پرکریا کا نریکشن کیا اور ایران کے نور مائکرو فلم کیندر اور بھارتی پستکالیوں کے بیچ ادھک سہیوگ پر بل دیا اور کہا کہ اسلامک دھروہر بھی ایران اور بھارت کی ساجھا سنسکرتی کا ایک حصہ ہے. اس پردرشنی میں اپستھت ایرانی اور بھارتی کلاکاروں نے قرآنی آیتوں کی کومل سلیکھوں سے سمبندھت اپنی کلاؤں کا پردرشن کیا. یہ پردرشنی آج سماپت ہو گئی. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی.
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچہ سماپت ہوئی. ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं. अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम ईश्वर आतिथ्य और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम आज की बात.
ईश्वरीय आतिथ्य।
दोस्तों, पवित्र रमजान के शुभ अवसर पर रेडियो हिंदी तेहरान की ओर से पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम ईश्वरीय आतिथ्य की 26वीं कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। अहमद अब्बास और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पवित्र रमजान के मुबारक महीने के अंतिम दिनों में आप द्वारा की जा रही इबादतों को अल्लाह कबूल करेगा। साथ ही हम अपने प्रिय श्रोताओं से यह भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले चलते हैं 26वें दिन की दुआ और उसका अनुवाद सुनते हैं।
अल्लाहुम्मा जाल सई फीहे मशकूरा वज़म्बी फीहे مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع الصامعين।
26वें दिन की दुआ का अनुवाद है। हे अल्लाह, आज के दिन मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को स्वीकार कर ले, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों को कबूल कर और मेरी कमियों को छिपा दे। हे लोगों की दुआओं को कबूल करने वाले।
पवित्र महीने रमजान के दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब केवल 3 या फिर 4 दिन ही बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में हमें सबसे पहले तो अल्लाह की इबादत में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि हमने इस पवित्र महीने में क्या क्या अंजाम दिया। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अल्लाह द्वारा इस मुबारक महीने में जो रहमतों का विशेष दरवाजा खोला गया है, महान ईश्वर द्वारा जो बरकतों का खास दस्तरखान बिछाया गया है, क्या हमने उससे लाभ उठाया, और अगर उठाया है तो कितना फायदा उठाया। क्योंकि यह रमजान आत्मा को शुद्ध करने और खुद को पापों से दूर रखने का महीना है। रमजान का मुबारक महीना ऐसा अवसर बनकर हम इंसानों के लिए आता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने ईश्वर के वजूद को समझ सकें। इसीलिए हमें इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अपने अल्लाह से हासिल करने की लालच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ऐसा न समाप्त होने वाला रास्ता है कि जिसका अंत केवल और केवल ईश्वर तक पहुंचने पर ही खत्म होता है। इस रास्ते में बहुत सारे पदभ्रष्ट और लुटेरे हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपनी आपदाओं कठिनाइयों से कैसे सुरक्षित रहें, हमारी सबसे बड़ी आशा और उम्मीद रमजान है, क्योंकि यह वह पवित्र महीना है कि जिसमें ईश्वर अपनी रहमतों के द्वार पूरी तरह से खोल देता है। यह ऐसा महीना है कि जिसमें ईश्वरीय दया की हवाएं चलती हैं और उसका हर पल एक उचित व अद्वितीय अवसर है, और अगर उससे अच्छी तरह लाभ न उठाया गया तो फिर केवल पछतावा ही होगा।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि पवित्र रमजान के महीने में अच्छे कामों का इनाम कई गुना बढ़ जाता है और नेक कार्य इस मुबारक महीने में कबूल होते हैं। इस हदीस का ये अर्थ नहीं है कि रमजान के अलावा अन्य महीनों में नेक कार्य कबूल नहीं होते, बल्कि नेक काम हमेशा अल्लाह को पसंद है और वो उसे कबूल करता है, लेकिन रमजान के पवित्र महीने में उसके कबूल होने की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। रमजान के इन अंतिम दिनों में आइए हम अच्छे कामों में दूसरों से आगे निकल जाएं और खुद को ईश्वर की दया और क्षमा के करीब पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह पवित्र कुरान के सूरह मोमिनून की 61वीं आयत में कहता है कि यही लोग भलाइयों को अंजाम देने में जल्दी करते हैं और यही उसमें अग्रसर रहने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि ईमान वाले वे हैं जो अच्छे कर्म करने में जल्दबाजी करते हैं और दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कुरान की नज़र में वे लोग ईश्वर के नज़दीक हैं जो नेक कामों को करने में बिल्कुल देरी नहीं करते। इसी तरह सूरह
واقعہ کی آرمبھک آیتوں میں اللہ قیامت کی مہان گھٹنا کا ورنن کرنے کے بعد کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان تین شرینیوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلا گنی لوگوں کا سموہ ہے جن کے کرم ان کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، دوسرا شاپت سموہ ہے جن کے کرم ان کے بائیں ہاتھوں میں ہوں گے، اور تیسرا سموہ ان نیک لوگوں کا ہوگا جو دنیا میں اچھے کرم کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس ورگیکرن کے بعد ایشور تیسرے سموہ کو اپنے سب سے قریب بندوں کے طور پر دوسروں سے ان کا پریچے کرائے گا۔
حضرت علی علیہ السلام نے مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز تمہیں اچھا کام کرنے سے روکے، تم اس کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی مومن کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ شیطان کے حاوی ہونے سے پہلے ہی نیک کاموں کو انجام دے دیا جائے۔ رمضان کے پوتر مہینے میں آسمان کے دوار شیطانوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، مومنوں دوارا انجام دیے جانے والے نیک کاموں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ایسی ستی میں کوئی بھی چیز انہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے سے نہیں روکتی ہے، اسی لیے ہم پہلے سے زیادہ رفتار میں نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ افسر ہوتا ہے کہ جب مومن ایشور کے قریب پہنچنے کے اپنے پریاسوں میں تیزی لاتا ہے اور سب کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی پوتر رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں اپنے پریاسوں کو اور تیز کریں گے تاکہ ہماری گنتی بھی پہلے پہنچنے والوں میں سے ہو۔ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک کاموں کو انجام دینے والوں کی لائنوں میں سب سے آگے ہوں۔ یہی وہ موقع ہے کیونکہ یہ مہینہ پیار، محبت، آشا اور نعمت کا مہینہ ہے۔ ایشور اس مہینے میں نردھنوں کو پروتساہت کرتا ہے تاکہ ایسے مارگ پر اگرسر رہیں جس کے انت میں ایشور کی پرسنتا اور سورگ حاصل ہو، ایسا مارگ جس پر ہر کوئی اکیلے چل کر گنتویہ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایشور اس مہینے کے روزوں کے ذریعے سبھی کی سہایتا کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کرنے والے ہوں یا چاہے اچھے لوگ ہوں جو ہمیشہ ایشور کا ذکر کرتے ہیں۔
دوستو، پوتر مہینہ رمضان جس طرح سے روزہ رکھنے والوں کے من اور آتما کو بدلتا اور سوچھ کرتا ہے، اسی طرح سے اسلامی دیشوں کے شہروں کو بھی الگ رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ دعاؤں کی آوازیں، افطار کی تیاری، دعوتیں اور شام کے وقت بازاروں میں خاص طرح کی چہل پہل، ایسی چیزیں ہیں جو رمضان کے مہینے میں زیادہ اسپشٹ روپ سے اور الگ طرح سے نظر آتی ہیں۔ پوتر رمضان کے مہینے میں روزے دار ویکتی صبح کی اذان سے لے کر شام کی اذان تک کھانے پینے سے بچ کر اپنے دھارمک دائتوں کا نروہن کرتا ہے۔ وہ روزہ رکھ کر ایشور کے نکٹ اپنی بندگی کا پردرشن کر کے روزے کے آدھیاتمک اور شاریرک لابھ اٹھا سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کو اس طرح سے نظر میں رکھیں کہ آپ کا وزن نہ بڑھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا وزن زیادہ ہو تو رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے وزن کو کم کر سکتا ہے۔ چکتسکوں اور وشیشگیوں کا ماننا ہے کہ یدی رمضان کے مہینے میں صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھا جائے تو یہ خون کی چربی، شرکرا کی کمی اور شریر کے ہانیکارک پدارتھ کو سماپت کرنے کا اچھا ابھیاس ہے۔ چکتسکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جیسا کہ دل ایک کھن کام کرتا ہے اور ایک کھن کے لیے رک جاتا ہے، اسی پرکار اماشے کے لیے بھی آوشک ہے کہ 11 مہینے نرنتر کام کرنے کے بعد ایک مہینے کے لیے اسے آرام ملے۔ چکتسا کی پراچین کتابوں، مسلم اور غیر مسلم چکتسکوں اور مہاپرشوں کی کتابوں میں روزے کے چکتسکیے فائدوں کے بارے میں بہت سے لیکھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ اس پریلام پر پہنچے کہ روزے سے ادھک منشی کے مزاج کے سنتولن اور اس کو بہتر بنانے کی کوئی اچھی دوا نہیں ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام کا کتھن ہے کہ اماشے ہر مرض کی جڑ ہے اور کھانے سے بچنا یا کم کھانا ہر مرض کی دوا ہے۔
दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना इबादत, आत्म सुधार और ईश्वर के नजदीक होने का एक बेहतरीन अवसर है। यही कारण है कि मोमिन इस महीने का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने भी रमजान के पवित्र महीने के बारे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया है। वे कहते हैं कि हर साल पवित्र रमजान महीने का आना ईश्वर द्वारा इंसानों को दिया जाने वाला वह मौका है जब इंसान अपने प्रयासों से खुद को भौतिक दुनिया के जलते हुए नरक से निकालकर स्वर्ग में ले जा सकता है। कुछ लोग उसी 30 दिनों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, कुछ पूरा साल स्वर्ग में बिताएंगे और कुछ अपने पूरे जीवन को वहां गुजारेंगे। लेकिन खेद की बात यह है कि कुछ लोग उसके किनारे से गुजर जाएंगे और बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। आयतुल्लाह खामेनेई रमजान के मुबारक महीने से लाभ उठाने के बारे में कहते हैं कि हमें इस पवित्र और मुबारक महीने के घंटों, दिनों और रातों से अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि अपने दिलों को आध्यात्मिक दुनिया से अधिक जोड़ें। अल्लाह की इबादत और उसके पैगंबरे व पैगंबरे इस्लाम के परिजनों के अनुसरण को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं।
दोस्तों, दिन और रात गुजर रहे हैं, रमजान के मुबारक महीने के अंतिम दिन भी तेजी से बीते जा रहे हैं। कितना अच्छा होगा कि हम इन बचे हुए दिनों में अल्लाह की इस मेहमानी का भरपूर फायदा उठाएं और बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। ईश्वर से सच्चे मन से वादा करें कि हम अपने सभी गुनाहों से माफ़ी मांगते हुए उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेते हैं और सदैव अल्लाह की आज्ञाकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारी इस सभा से आप सुन रहे थे पवित्र महीने रमज़ान के संबंध में विशेष कार्यक्रम, जिसमें रोज़े के महत्व और इसके फायदों के बारे में आपको बताया गया। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत किया जाएगा हमारी इस समय की सभा का अंतिम कार्यक्रम आज की बात। तो श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम आज की बात में हमारी समीक्षात्मक बहस, जो कि किसी भी घटना के अलग अलग आयामों को चर्चा में लाती है। और आप ये कार्यक्रम सुनिए और मुझे अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान, सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम का विषय है बिलडोजर, भारत का नया संविधान या फिर सत्ता का नशा। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आजकल भारत के कई हिस्सों में लोकतंत्र का स्थान बिलडोजर तंत्र ले रहा है। सत्ता में बैठे लोग ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस देश का संविधान और कानून सत्ताधारियों के साथ ही चल रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि बिल्डोजर बिल्डोजर नहीं रहा बल्कि उस खेल का प्रतीक बन गया है कि जिसको मिलकर ताकतवर लोग धर्म और कानून के नाम पर गरीबों और साधारण लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में अतिक्रमण नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल्डोजर से कार्रवाई की जा रही है उससे साफ साफ जाहिर है कि वो अतिक्रमण पर कम किसी खास लोगों के खिलाफ ज्यादा चल रहा है। वैसे बताते चलें कि जिस तरह भारत में बिल्डोजर कानून फल फूल रहा है वैसे ही इसराइल में काफी समय से वो काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के अधिकारियों ने इसराइल का दौरा करके जो सबसे अहम चीज उससे सीखी है वो है बिल्डोजर कानून। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी ओर इशारा किया है कि जो कार्रवाई बीजेपी कर रही है वो तो इसराइल में होती चली आ रही है।
उस वक्त की सरकार ने अपनी इमरजेंसी नाफिद करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्टाइड स्टेट इसराइल वहां पर होता है, भारत में तो जमहूरियत है ना। हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते ढुंडरा पीटते हैं कि हमारे पर लोकतंत्र है, पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये लीगल है 5 दिन पहले 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकाल लेते प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें है, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में क्यों उसमें कट्टा तफंचा हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको? उनको हथियार छीन नहीं सकती थी? उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के प्रोसेशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। सवाल जब ये है तो सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने पुलिस के, वहां के थानेदार को, वहां के ACP को, वहां के इंटेलिजेंस के लोगों को? आप क्या एक्शन लिए? आपने खुद उस प्रोसेशन को अलाउ किया, ये पूरा मंसूबा बनाया गया, और जाओ तुम गड़बड़ करो, तमाशा करो, और उसके बाद जो काम मॉब नहीं कर सका उस दिन वो सरकार ने कर दिया।
हाल ही में दिल्ली के जहांगीरीपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के भड़कने के 4 दिनों बाद 20 अप्रैल को स्थानीय प्रशासन ने कई झुग्गियों, मकानों, दुकानों और यहां तक कि एक मस्जिद के द्वार पर बिल्डोजर चलवा दिया और उन्हें तोड़वा दिया। दिल्ली के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं वो स्वयं इस बारे में बता रहे हैं।
हिंदुस्तान का इस वक्त माहौल पूरी तरह से बिगाड़ा भी गया और ज्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि भाई आप पूरे मुल्क को इस वक्त आप फसाद में, आग में, फसाद की आग में तब्दील करना चाहते हो। अगर इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई अगर आप करना चाहते हो वो लीगल है तो ये बाद में भी की जा सकती थी। ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि जहां पर कल परसों शोभा यात्रा के दौरान फसाद हुआ, दंगा हुआ, अभी गिरफ्तारियां चल रही हैं, फसाद की आग ठंडी भी नहीं हुई और आप वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर जो है लोगों के घरों को गिराने का काम कर रहे हो जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर किया, तो ये ठीक नहीं है। इससे माहौल खराब होगा। मैं अपील करना चाहता हूं अमित शाह जी से और भाजपा के तमाम लीडरान से कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएं और इस पूरे हिंदुस्तान के माहौल को, खासकर दिल्ली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करें।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात
वहीं भारत के सर्वोच्च अदालत ने भी बिल्डोजर की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले संबंधित लोगों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज एन नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि कुर्सी, स्टॉल और बॉक्स हटाने के लिए बिल्डोजर की क्या जरूरत है। नियम के अनुसार 5 से 15 दिनों का नोटिस दिया जाए। इस मामले में निगम और सरकार दोनों जवाब दाखिल करें। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा कि केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के पत्र को ही निगम ने आदेश मान लिया। इस तरह तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। कई राज्यों में बिल्डोजर के जरिए गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील एम आर शमशाद कहते हैं,
अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कल ऑर्डर पास हुआ था कि जहांगीरपुरी में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा है उस पर उसको यथास्थिति बनाई जाएगी, स्टेटस को रखा जाएगा, वो अभी फर्दर ऑर्डर्स तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां अभी कोई डिमोलिशन अब नहीं होगा। अभी ये ओरल सबमिशंस हुए हैं, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता कि इस तरह किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि इतना सोच समझ के एक्शन लिया गया होता तो कुछ लोग जो जेल में थे वो FIR में पत्थर फेंकने वालों में शामिल नहीं होते और उनके घर नहीं तोड़े जाते।
वहीं ऐसे भी मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया कि जिसके दस्तावेज लोगों के पास मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों ने किसी की भी नहीं सुनी। उनको तो ऊपर से आदेश मिला था और बिल्डोजर चलाना ही था। स्थानीय नागरिक दिलीप सक्सेना बताते हैं,
ये मेरे पास जे जे सलम DDA की अलॉटेड है, ये NOC है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे जे सलम ने MCD को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है, हमने नापतोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो।
कितना नुकसान हुआ आपका?
नुकसान 7-8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा।
8 लाख? तो 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे?
मैं कोर्ट में जाएंगे, MCD से मांगेंगे जब MCD ने तोड़ा है तो।
भारत के कई राज्यों में अचानक से शुरू हुए बिल्डोजर तंत्र के बारे में आखिर भारत का कानून क्या कहता है, इस बारे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कहते हैं,
देखिए कानून बहुत क्लियर है। एक तो कि MCD एक्ट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कानून है, उसमें धारा 343 के हिसाब से आप किसी का भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन या इनक्रोचमेंट नोटिस दिए बिना रिमूव नहीं कर सकते, उनको नोटिस देनी पड़ती है। और अगर आप उस कंक्लूजन पर भी आए कि हाँ ये इलीगल है तो भी आपको 5 या 15 दिन का समय देना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए पहले, उसके बाद उनको अपील जाने का हक है, अपील पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही डायरेक्ट प्रोविजन है। बिसाइड्स दिल्ली में ये समस्या इतनी गहरी है कि पार्लियामेंट को उसमें आना पड़ा है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके एक जनरल इंजंक्शन ऑर्डर दिया हुआ है। ये कानून है 2011 का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 2011, जिसके दौरान और उसका अमेंडमेंट 2021 में भारतीय जनता पार्टी सरकारी लाई है, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला है कि कोई भी एनक्रोचमेंट पूरे दिल्ली में उसको 2023 दिसंबर तक हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट और सरकार और टाउन प्लानर्स सब सोच रहे हैं कि इस समस्या को किस तरह से हल किया जाए। लोगों की ये जो तकलीफ है, गरीब लोगों की खास करके और मिडिल क्लास लोगों की, उसको समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अगर पार्लियामेंट ये कहता है तो मेरे ख्याल से म्युनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर साहब को यह हक नहीं बनता है कि ये अपने कानून अपने हाथ में ले ले और ऐसा एक वायलेंस लोगों को पर यू नो जारी कर दे जो हमारे देश के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं।
बिलडोजर की होती कार्रवाई पर आम जनता कुछ इस तरह अपना दर्द बयान करती है।
जो अपराधी नहीं है, जिनके अगल बगल वालों ने अगर पत्थर फेंके हैं, उनको सजा क्यों मिल रही है? उनके छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए हैं, रोजे से थे, नमाजें नहीं मिल रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए सोचा है उन्होंने? जहांगीरपुरी में जो हादसा हुआ, तलवारें दिखा रहे थे, आप सारी मीडिया ने दिखाया, तलवार दिखा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उनपे क्या कार्रवाई हुई? उनपे क्या कोई कार्रवाई हुई? आप उनपे भी कार्रवाई करते हो, पत्थर वालों पे भी कार्रवाई करते, तब ये देश का जो न्यायपालिका है तब वो करता। और मीडिया कैसे दिखा रहा था? मीडिया कह रही थी पहला बुलडोजर चला, दूसरा बुलडोजर चला, 9 बुलडोजर चले और स्टे हो गया 11:00 पे, तो वहां पे यथा स्थिति के लिए स्टे हो गया। उसके बावजूद 48 मिनट तक के बुलडोजर चलता रहा है।
बहुत मुश्किल हो गया, न्याय का नाम ही नहीं रह गया। हर जगह पे बस वही आतंकी आतंक हो रहा है। किससे शिकायत करी जाए और किसके आगे अपना दुखड़ा रोया जाए, ये जो स्थिति चल रही है बहुत आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत खराब है।
ये बुलडोजर का एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। इससे लोगों में, आवाम में दहशत, जो अल्पसंख्यक इस मुल्क में बहुसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाने के लिए एक ये प्रथा चला दी गई है कि अगर आपने गलत बोला, अगर आप कुछ भी करेंगे, मुसलमान आज इसलिए नहीं बोलना चाहता है कि वो सही है, अपनी जगह पे सही है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, थाना पुलिस हो सकता है, जेल में डाल सकते हैं, उसके गैंगस्टर लगा देंगे, घर गिरा देंगे।
कुल मिलाकर भारत में आजकल नया कानून राज कर रहा है और उस कानून का नाम है बुलडोजर। अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर कट्टरपंथी हिंदुओं की ओर से लगाए गए भड़काऊ नारे, मस्जिदों पर जबरदस्ती लगाए गए भगवा झंडों और मुसलमानों के साथ की गई मारपीट के बाद दिल्ली में भड़के दंगे ने एक बार फिर भारत सरकार की पोल खोल दी है। जहां भारत की मोदी सरकार देश की राजधानी को सुरक्षित रखने में नाकाम दिखाई दे रही है, वहीं अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा दे रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुछ ऐसे ही देखने को मिला। जिन हिंदू संगठनों ने बिना पूर्व इजाजत के रामनवमी के मौके पर भड़काऊ जुलूस निकाले और जिन्होंने पत्थरबाजी की शुरुआत की, आज वे आराम से अपने घरों और दंगा मास्टर आकाओं के ठिकानों में बैठे हुए हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं, उन्हें हर तरह की कठिनाइयों और नए कानून बिलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कुछ टीकाकारों का कहना है कि भारत में संविधान और अदालत पर बिलडोजर चल रहा है और ये सब करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली मोदी सरकार वास्तव में सबके विनाश की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।